पृष्ठ संख्या 49 अध्याय 3 धर्म की उत्पत्ति तथा विकास ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन। शीर्षक है भूमिका। धर्म का वास्तविक स्वरूप, क्षेत्र और उसका मानव जीवन में स्थान आदि विषयों का निरूपण तब तक पूर्ण नहीं हो पाता जब तक कि यह न जान लिया जाए कि धर्म की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे और किन किन रूपों में हुआ। धर्म की उत्पत्ति और विकास की समस्या धर्म दर्शन की समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है। धर्म दर्शन इन प्रश्नों पर विचार करता है कि मनुष्य क्यों और कैसे धार्मिक बना। धर्म को यह आधुनिक सर्वोच्च रूप क्यों और कैसे प्राप्त हुआ। किन किन रूपों में धर्म को इस स्थिति तक पहुंचना पड़ा है और अविकसित धर्म तथा आधुनिक प्रगतिशील विश्व धर्म में क्या अंतर है। वे कौन कौन से तत्व हैं जिनके कारण मनुष्य धार्मिक बनता है। धर्म दर्शन इन प्रश्नों पर निम्नलिखित तीन विधियों से विचार करता है। पहला है मानव शास्त्र की दृष्टि से, दूसरा है मनोवैज्ञानिक विवेचन द्वारा तथा तीसरा है ऐतिहासिक विधि द्वारा। धर्म उत्पत्ति के विषय में मानव शास्त्र की दृष्टि से इस बात का पता लगाते हैं कि मानव समाज में धर्म कब और किस प्रकार उत्पन्न हुआ। इस तथ्य का पता लगाने के साथ ही निश्चित रूप से आदिम मानव समाज के विषय में विचार करना आवश्यक होता है। मनोवैज्ञानिक विवेचन द्वारा इस बात का पता लगाया जाता है कि मानव मन में धर्म की उत्पत्ति कैसे और किन किन कारणों से हुई। मानव में सर्वप्रथम किन प्रवृत्तियों, इच्छाओं, संवेगों तथा प्रेरणाओं के कारण धर्म की भावना जगी, जिसके कारण मनुष्य धर्म की ओर उन्मुख हुआ। इसी प्रकार ऐतिहासिक रूप में इस बात का भी पता लगाया जाता है कि धर्म का प्रादुर्भाव कब और किन रूपों में हुआ तथा इसके विकास की क्या गतिविधि रही। इसमें संदेह नहीं कि धर्म की उत्पत्ति और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन आधुनिक विज्ञानों जैसे मानव शास्त्र, मनोविज्ञान तथा ऐतिहासिक पर्यवेक्षण द्वारा ही संभव हुआ और इन अध्ययनों के आधार पर ही कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन भी हुआ। परंतु इन सिद्धांतों के पहले भी कुछ सिद्धांत प्रचलित थे जो कि अब इतने प्रचलित नहीं हैं। इन प्राचीन सिद्धांतों से भी धर्म की उत्पत्ति पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश पड़ता है। सर्वप्रथम इन प्राचीन सिद्धांतों पर ही विचार कर लेना ठीक होगा। पृष्ठ संख्या 50। शीर्षक है, पहला है प्राचीन सिद्धांत। इसके अंतर्गत शीर्षक अ है दैवी प्रकाशन या डिवाइन रिविलेशन का सिद्धांत। इस मत के अनुसार स्वयं ईश्वर ने ही अपनी विशेष कृपा से मानव हितों के लिए धर्म का प्रकाशन अवतार एवं पैगंबर आदि के माध्यम से किया है। इसीलिए मानव जीवन में धर्म का प्रारंभ हो गया। धर्म की उत्पत्ति के विषय में यह सिद्धांत अधिकांश रूप से धार्मिक परंपराओं में माना जाता है। विशेष रूप से यह सिद्धांत यहूदी, ईसाई एवं इस्लाम धर्म में पाया जाता है। इसका प्रमाण इन धर्मों के शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मिलता है। अगला शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला शीर्षक है अमनोवैज्ञानिक धारणा। आधुनिक युग में इस सिद्धांत में केवल रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी व्यक्ति ही विश्वास कर सकता है, क्योंकि यह सिद्धांत आवश्यकता से अधिक बौद्धिक एवं यांत्रिक प्रतीत होता है, जो कि मनोवैज्ञानिक नियमों के बिल्कुल प्रतिकूल है। इस मत के अनुसार मानव बुद्धि को एक रिक्त पात्र के रूप में कल्पित किया गया है, जिसमें ईश्वर, अवतार या पैगंबर आदि द्वारा धर्म संबंधी परिपक्व विचार भर दिए गए। यह निश्चित है कि प्रारंभिक अवस्था में मानव बुद्धि अविकसित रूप में थी और ऐसी दशा में उसकी बुद्धि में धर्म संबंधी विचार किस प्रकार स्थान पा सके और मानव उन विचारों का मूल्यांकन किस प्रकार कर सका, यह समझ में नहीं आता। अब अगला शीर्षक है दूसरा, सेलिंग द्वारा आलोचना। सेलिंग ने दैवी प्रकाशन के विरुद्ध जो आलोचना प्रस्तुत की है वह महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। उनका कहना है कि यदि धर्म की उत्पत्ति दैवी प्रकाशन से मानी जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसके पूर्व मानव अनिश्वरवादी था। यदि वह अनिश्वरवादी ही था तो दैवी प्रकाशन किस प्रकार ग्रहण कर सका, अर्थात सर्वथा धर्म से शून्य मानव किस प्रकार ईश्वरीय आदेशों को समझने में सक्षम हो गया। यदि यह मान लिया जाए कि प्रारंभ में मानव अनिश्वरवादी था और बाद में उसने दैवी प्रकाशन ग्रहण कर लिया, विरोधपूर्ण है। अगला शीर्षक है तीसरा, दैवी प्रकाशन का सिद्धांत विकासवाद के सिद्धांत के विपरीत है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में आदिम मनुष्य की बुद्धि अवश्य ही विकसित रही होगी। ऐसी दशा में मानव उच्च कोट के भावों और विचारों को ग्रहण तथा धारण करने में असमर्थ रहा होगा। यदि ऐसी बात है तो फिर आदिम मानव दैवी प्रकाशन जैसे सर्वोच्च विकसित विचारों को किस प्रकार ग्रहण कर सका होगा। उत्तर स्पष्ट है कि आदिम मनुष्य के लिए दैवी प्रकाशन ग्रहण करना संभव नहीं था, अतः धर्म की उत्पत्ति के लिए दैवी प्रकाशन संबंधी सिद्धांत व्यर्थ ज्ञात होता है। अब अगला शीर्षक है बिंदु ब, मानवीय विवेक सिद्धांत या थ्योरी ऑफ ह्यूमन रीजन। इस सिद्धांत के अनुसार धर्म की उत्पत्ति मानवीय विवेक से हुई है। इसका अर्थ यह है कि मानवीय विवेक या बुद्धि में धर्म जन्मजात रूप में होता है। चूंकि इस मत के पोषक 18वीं सदी के कुछ ब्रिटिश बुद्धिवादी जैसे हर्बर्ट और जॉन टोलैंड आदि थे, इसलिए उन्होंने धर्म को बुद्धिगत माना और गणित के प्रत्ययों के समान धर्म के प्रत्ययों जैसे ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता तथा नैतिक नियमों की शक्ति की सत्यता को तर्क पर आश्रित माना। ये बुद्धिवादी देववाद या डिजेम के पोषक थे। इनके मत में दैवी प्रकाशन का सिद्धांत व्यर्थ है। पृष्ठ संख्या 51। इनके अनुसार सभी धर्म प्रारंभिक अवस्था में बौद्धिक होने के कारण शुद्ध थे। सभी धर्मों में सामान्य तत्व बुद्धि या विवेक या तर्क या प्रज्ञा को ही कहा जा सकता है। अब प्रश्न है कि यदि प्राकृतिक या प्रारंभिक धर्म पूर्ण रूप से मानवीय बुद्धि या विवेक पर आधारित था तो धर्म में आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड और रूढ़ियाँ क्यों दृष्टिगोचर होती हैं। इसके उत्तर में इन विचारकों का कहना है कि स्वार्थी पुरोहितों ने जन समूह को अपने नियंत्रण में रखने तथा उनका पोषण करने के लिए ही शुद्ध और तर्कपूर्ण धर्म में अंधविश्वास, कर्मकांड आदि का अनुप्रवेश कराया। इस आधार पर धर्म का दो रूपों में विकास हो गया। प्रथम शुद्ध प्राकृतिक मानव विवेकाश्रित धर्म और दूसरा पुरोहितों की इच्छा अनुसार प्रचलित ऐतिहासिक धर्म। इस ऐतिहासिक धर्म में पाए जाने वाले विश्वास एवं व्यवहार मिथ्या एवं निरर्थक प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन विकसित धर्मों में पाए जाने वाले समस्त विश्वास और कर्मकांड मानवीय स्वार्थ के आरोपण मात्र हैं। धर्म का वास्तविक रूप तो प्राकृतिक धर्म ही है, जो प्रारंभ से ही तर्क एवं विवेक पर आधारित है। इस मत के समर्थक 18वीं सदी के अंत में फ्रांस के विचारक लोमेट्रेड, डी एलेम्बर्ट तथा वाल्टेयर भी थे। अपने युग में यह सिद्धांत चाहे बहुत ही प्रचलित रहा हो, परंतु इस समय यह लुप्त प्राय है, क्योंकि इसमें अनेक दोष निहित हैं। अगला शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला शीर्षक है यह मत विकासवादी सिद्धांत के विपरीत है। मानवीय विवेक का सिद्धांत विवेक को ही धर्म की उत्पत्ति का आधार मानता है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में आदिम मानव इतना विवेक और प्रज्ञा संपन्न कैसे रहा होगा जिससे धर्म के इतने परिपक्व और उच्च विचार उसकी बुद्धि में आए होंगे, क्योंकि विकास के आधार पर तो आदिम मनुष्य कई शताब्दियों पश्चात इस स्थिति को पहुंचा होगा। अतः हम या तो विकास के सिद्धांत को ही सही माने या आदिम मानव का धर्ममय बुद्धि को ही सही माने, जो कि विरोधपूर्ण है। यदि आदिम मानव धर्म के क्षेत्र में इतना प्रौढ़ था तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में इतना पीछे कैसे रहा। अतः यह सिद्धांत समीचीन नहीं ज्ञात होता। अगला शीर्षक है, दूसरा है धर्म की उत्पत्ति में बुद्धि या विवेक के महत्व की अतिरंजना। यह सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति के विषय में बुद्धि को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करता है। धर्म में भावना अथवा संवेग और संकल्प का कम महत्व नहीं है। धार्मिक विचारों तथा अनुभूतियों की प्राप्ति के ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस सिद्धांत में इनकी उपेक्षा की गई है। केवल बुद्धि को ही धर्म का स्रोत मान लिया जाए उचित नहीं प्रतीत होता। अगला शीर्षक है, तीसरा है पुरोहित वर्ग धर्म को उत्पन्न नहीं करता बल्कि संरक्षण और उपयोग करता है। इसमें संदेह नहीं कि पुरोहित वर्ग जनमानस की धार्मिक प्रवृत्ति का शोषण अपनी स्वार्थ साधना के लिए करता है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि ऐतिहासिक धर्मों की उत्पत्ति केवल पुरोहितों की धूर्तता, अंधविश्वास एवं आडंबर से ही होती है। धर्म केवल किसी वर्ग विशेष पर आश्रित नहीं होता। पुरोहित किसी नवीन धर्म की उत्पत्ति नहीं करता। धर्म का अस्तित्व स्वतंत्र है। पुरोहित केवल उससे कुछ स्वार्थ साधन अवश्य करता है, साथ ही उसका संरक्षण भी करता है। यदि ऐतिहासिक रूप से दृष्टिपात किया जाए तो स्पष्ट होता है कि धर्म के वास्तविक प्रवर्तक अवतार या पैगंबर होते हैं और उनका धर्म के बाह्य कर्मकांडों और उत्सवों से लेस मात्र संबंध होता है। वे तो नवीन धार्मिक मूल्यों की स्थापना करते हैं। पुरोहित वर्ग इन पूर्व प्रचलित मतों का उपयोग मात्र करता है। संसार के इतिहास में महान धर्मों पर दृष्टि डालने से यह पता लगता है कि उनका उद्भव पुरोहित वर्ग से नहीं है।